पुनर्ब्राह्मणा पुण्यां भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकं इमं प्राप्य भजस्व मां। भगवान क्या कहते हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो इससे क्या पता चलता है, अनित्य ये जो जीवन है अनित्य है और सुख रहित है, सुख नहीं है, अनित्य है, थोड़ा सा जीवन है और इसमें सुख नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से और मेरा भजन करो भगवान कह रहे हैं। तो इन बातों को अर्जुन ने बार बार सुना है, इसलिए अर्जुन का मोह दूर हो गया है ना। इसलिए कहा गया है कि गीता को बार बार सुनना चाहिए, गीता बार बार, गीता को बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, है ना। तो ये 33वां था। अब इसके पिछला श्लोक 32 में आइए। 32 में भगवान क्या कह रहे हैं, मामि पार्थ है व्यपाश्रित्य ये पिशो पापयोने अहं स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रांश ते पियांति परांगतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, ये परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो कृष्ण के शरण में आए वो परागति प्राप्त करेगा, परम गति जन्म मरण से छूट जाएगा। तो इसमें भी अर्जुन ने ये बात सुन ली, कृष्ण की जो है अविनाशी महिमा सुनी है। अब इसके पहले और आइए 28वें श्लोक में, श्लोक संख्या 28। इसमें भगवान क्या कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक। भगवान कहते हैं, शुभा शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेश्यसी। इस तरह तुम कर्म के बंधन और इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्म बंधन से छूट जाओगे, कर्म बंधन के अंदर जन्म मरण से छूट जाओगे, है ना। तो इसे क्या पता चलता है, कृष्ण की अविनाशी महिमा का पता चलता है, कृष्ण की कैसी अविनाशी महिमा है ना। अच्छा 28वें श्लोक। अब इसके पहले आइए 25वें श्लोक में, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मन्या जिनोपि मां। भगवान क्या कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इससे क्या पता चलता है, जो कृष्ण की पूजा करते हैं वे जन्म मरण से छूट जाते हैं, है ना। इससे पता चलता है ना? तो इस तरह से ये श्लोक हुआ। अब इसके पहले आप आइए श्लोक संख्या 22, श्लोक संख्या 22। इसमें भगवान क्या कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो इससे क्या पता चलता है, इसके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जो स्वर्ग में जाते हैं यज्ञों के द्वारा, जो स्वर्ग में जाते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से पृथ्वी में जन्म लेते हैं, है ना। यहां पर भगवान के योग क्षेम बहाम्यहम्, उनकी आवश्यकताएं भी मैं पूरी करता हूँ और रक्षा भी करता हूँ। तो रक्षा का मतलब क्या है, जन्म मरण से भी रक्षा करता हूँ, जो आवश्यकता है वो भी पूरी कर दूंगा और जन्म मरण से भी रक्षा करूंगा। तो ये पता चलता है भगवान का अविनाशी महात्म्य है। ये 22वां है, और देखिए 21वां, हाँ 21वां हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना पता चलता है कि किस प्रकार से जन्म के बंधन में बंधना पड़ता है जीव को। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक यानी यज्ञ करने वाले विस्तृत स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। कैसे पता चलता है जन्म मरण का चक्र कैसा है, जिसमें बंधे हैं सब जीव बंधे हुए हैं पता चलता है। तो ये दृष्टि है भगवद गीता से हमें प्राप्त होती है। और ये श्लोक संख्या 19 इसमें भी भगवान बताते हैं क्या, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहणाम्युत्र जामी चाम अमृतम चैव मृत्युश्चा शतसच्चाहम अर्जुन। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता और लाता हूँ, मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। तो मृत्यु के भी कारण भगवान है और अमृत के भी कारण भगवान है। अगर मृत्यु पाना चाहते हो तो भी भगवान देने के लिए तैयार हैं, अगर मृत्यु से छुड़ना चाहते हो तो भी भगवान छुड़ाने के लिए तैयार हैं। इससे पता चलता है ना, इस तरह से अर्जुन ने बहुत सुना है। 18वां, धन्यवाद, 18वां श्लोक देखिए, अभी 18वें में आई फिर 8, अभी हम पीछे जा रहे हैं क्रम से 19 से 18, ठीक है। 18वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरेन प्रभु वहां प्रलया स्थानम निधानम बीजम अभ्यम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। इससे क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि जन्म मरण का ये जो है चक्र है इसमें भगवान ही केवल अविनाशी है, छुड़ाने वाले हैं, है ना। अच्छा आप इसके पहले कौन सा श्लोक देखिए, तेरवाने का लिए, इसमें भगवान क्या कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिताम भजन्त नन्न मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। मिला, वही बात मिली कि वे भजन करते हैं मेरा, क्यों, ज्ञात्वा भूत आदि मम, अविनाशी हूं और सबका आदि हूं, सबका जन्म होता है भगवान से और भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, और श्लोक संख्या 11 निकालिए, निकाला, भगवान कह रहे हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ं मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूर्ख, वो जन्म मरण से बंधे हैं और मेरा उपहास करते हैं, कितने बेवकूफ हैं। जन्म मरण से बंधे हुए ये मूर्ख जो है कृष्ण का उपहास करते हैं, जिनका जन्म मरण नहीं होता कभी, वे सब सबके जन्म मरण जानते हैं कृष्ण, कितने बार जन्म मरण हो चुके हैं सब जानते हैं, अबे बेवकूफ जो है ना कृष्ण पर हंस रहे हैं, कितने बेवकूफ हैं। और श्लोक संख्या 10 निकालिए, इसके पहले कृष्ण क्या कह रहे हैं, मयाध्यक्षे अने प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चरण तथा आचार प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, प्रकृति उत्पन्न कर रही है, चर चर सब प्राणी को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसे क्या पता चलता है, जीवन कितना थोड़ा है, किस प्रकार से बार बार जन्म हो रहा है प्रकृति के द्वारा, है ना, और भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, भगवान के सामने भगवान का जन्म मरण नहीं होता है, ये पता चलता है। और इसके पहले कौन सा श्लोक है, 8वां, इसमें भगवान करें प्रकृतिम स्वामवस्तभ्य विस्तृजामि पुनः पुनः बोध ग्रामम इमं कृतनम अवशम प्रकृतिर्वशान। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये भगवान का अविनाशी महात्म्य है। और हाँ, 7वां श्लोक, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्पकांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। देखा किस प्रकार से जो है जन्म मरण के बस में है सब प्राणी और कृष्ण अविनाशी हैं। श्लोक संख्या 3, श्लोक संख्या 3 निकालिए, इसमें भगवान कह रहे हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भौतिक संसार क्या है, जन्म मरण का मार्ग है। तो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि हम जीवन में आनंद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये किस रास्ते पर चल रहे हैं, जन्म मरण का ये रास्ता है, इसमें चल रहे हैं, ये पता चलता है। श्लोक संख्या 2, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम्। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है और चूंकि है आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, इसमें भी अविनाशी बताया है भगवान ने। श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इससे क्या पता चलता है, क्या क्या पता चला इससे, भगवान की अविनाशी महिमा पता चली ना। श्लोक संख्या 23 है, इसके पीछे निकालिए यत्र काले तु नावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो इससे क्या पता चलता है? बार बार आना पड़ता है, नहीं जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है ना, इससे ये पता चलता है। अच्छा, अब इससे वो संख्या 21 निकाली है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्तोक्षरेत्युक्त तमाहो परमाहम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसे वेदांति अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो क्या पता चला? भगवान की अविनाशी महिमा इससे पता चली है ना। हाँ, 20वां श्लोक, इसमें भी देखिए भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मातु भावो न्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन या सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो इससे पता चलता है क्या? भगवान की अविनाशी महिमा है ना। और श्लोक संख्या 19 है, इसमें भगवान कह रहे हैं, भूतग्राम अहम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रणीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? विवश है, सब प्राणी विवश हैं, जन्म और मरण से विवश है। भूत्वा भूत्वा प्रणीयते, उत्पन्न हो करके मरते हैं है ना। इससे पता चलता है कितना अनित्य है। अर्जुन का मोह दूर हुआ ना, क्योंकि अर्जुन इस जीवन को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। हम सुखी कैसे रहेंगे, हम राज्य पाके क्या करेंगे, इनको मार करके हमें कहां सुख मिलेगा। लेकिन यहां पर भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, इसे सुख की आशा ही करना बेकार है, ये जीवन ही इतना थोड़ा सा है। तो ये पता चलता है। तो अभी हमने 19वां पढ़ा था ना, अब 18वां पढ़िए। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वां प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलेयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। देखा, ब्रह्मा का दिन रात, ब्रह्मा के दिन रात में कितना जो है मतलब वो होता है भारी सृष्टि और कितनी बड़ी प्रलय होती है। तो इससे पता चलता है। अच्छा, अब निकालिए श्लोक संख्या 16 निकालिए। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? 16, इससे भी वही विषय मिलता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो इसमें दोनों बातें हैं, जन्म मरण, जन्म मरण यही है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ही है। और अगर कृष्ण के धाम में आओ तो जन्म मरण नहीं है और कोई दूसरा विषय ही नहीं है। इस भगवद गीता में और कोई दूसरा विषय ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, ये है वो है, दुनिया भर कोई विषय नहीं है, बस जन्म मरण या तो जन्म मरण ग्रहण करो और नहीं तो छोड़ो जन्म मरण से, बस एक ही विषय है पूरी भगवत गीता का, है ना। किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद को अपना हाथ दिखाना चाहा, हाँ, कि आप मेरी हस्तरेखा देखिए, तो प्रभुपाद ने बहुत कहा कि नहीं नहीं, हस्तरेखाएं देखने से अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। नहीं नहीं स्वामी जी, मेरी हाथ की रेखाएं देखिए, मुझे समझाइए, आपको पता है घटना? नहीं पता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा ठीक है देखता हूँ। तो ऐसे उसकी हस्तरेखा देख करके और अपना बड़ा बुरा मुंह बनाया, ओहो कितने बार जन्म मरण यही है तुम्हारी हस्तरेखा में। वो सोच रहा है कि वो बताएं कि हस्तरेखा में मतलब बचपन से जो है ना आपको कितने कितने सुख प्राप्त हुए, क्या या क्या क्या दुर्घटनाएं प्राप्त हुई, आगे चल करके क्या सुख का और लाभ का समय आ सकता है और बहुत बड़ा पद मिल सकता है, बहुत बड़ा धन की प्राप्ति हो सकती है। ये प्रभुपाद के जन्म मरण कितना जन्म मरण जो है भरा हुआ तुम्हारे हस्तरेखाओं में, और कुछ है ही नहीं जन्म मरण की तरफ। तो ये दृष्टि है, ऊंचाई से देखो तो पता चलता है, ब्रह्मा जी के दृष्टि से देखो तो उनके एक सेकंड में यहाँ के 100,000 साल बीते हैं, ब्रह्मा जी के एक सेकंड में आपके कितने बार जन्म मरण होते हैं एक सेकंड में। तो क्या महत्व है इस जीवन के सुखों का, क्या महत्व है? सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी दुख, दुख दोषानु दर्शनम, ये ज्ञान है। अगर ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखो तो आप जो है ना उनके एक सेकंड में आप जो है ना 50 बार जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, यही ये है और कुछ है ही नहीं। क्या है, क्या महत्व है? आपको कुछ सुख मिल रही है, इंद्रिय तृप्ति मिल रही है, इसका क्या महत्व है, है ना। अच्छा हमने 16वां पढ़ा ना अभी, अब है अब 15वां देखिए, 15वां देखिए कितना सुंदर भगवान जो है ना कैसी दृष्टि दे रहे हैं भगवद गीता में। देखिए मामुपेत के पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानाम संसिद्धिम परमाम गताम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है ना। अच्छा और श्लोक संख्या तेरह में भगवान क्या कह रहे हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यात प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमां गतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इसमें क्या पता चलता है? भगवान की अविनाशी महिमा पता चलती है। अच्छा अब श्लोक संख्या ग्यारह इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति अन्यतयो वीतरागान यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इसमें भगवान के अविनाशी महिमा है बताया है। और श्लोक संख्या 10 देखिए, इसमें भगवान क्या कर रहे हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भरपूर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है, है ना। ये और श्लोक संख्या 9 में भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे स्मरण करना है भगवान का। कविम पुराणम मनुषा सितारम अणोरणीयां समनुस्मरे दियाहं सर्वसधातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तम सहा परस्ताम। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान करे, कैसे सर्वज्ञ है, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत हैं तथा नित्य पुरुष हैं, वे सूर्य की भांति तेजवान हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। और छठा श्लोक देखिए, इसमें भगवान क्या कहते हैं, यम यम बाप स्मरण भावम यद्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदातन भाव भाविताम। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। खैर यहाँ हाँ ये भी जन्म मरण तो यही है, जन्म मरण का इसमें बताया है। तो इस तरह से जो है, श्लोक संख्या 5, हाँ इसको आप कह सकते हैं, 5 में श्लोक निकालिए, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समन भावम याति नास्त्यत्र संशयम। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, है ना। तो इस तरह से हमने मतलब बहुत चर्चा की है, और भी अगर आप पीछे निकालते जाओ तो निकलते चले जाएंगे। तो दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया है कि देह नाशवान है, है ना, जीव अविनाशी है। तो इस तरह से बहुत हैं, और जो है भगवद गीता की जो भाषा है ये इस प्रकार की है जो कि हमारे मोह को नष्ट करती है। और अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है, अर्जुन ने कहा कि मोहोयम विगतो मम, विगत का मतलब है विशेष रूप से गत, गत माने चला गया, विगत गत माने होता है गया, ठीक है ना, और विगत का मतलब विशेष रूप से चला गया है, मोह चला गया है, है ना। भगवद गीता में ये सब वर्णन नहीं है कि कैसे जीवन में आनंद लिया जाए, ये जिंदगी बड़ी लंबी है, लोग कहते हैं ना मौत तो है ही नहीं, जिंदगी कैसे कटे, जिंदगी नहीं कटती, दिन नहीं कटते, टाइम पास नहीं होता, टाइम पास करने के लिए फिल्में देखो, क्रिकेट का मैच देखो, ये गीता नहीं बता रही। गीता क्या बताती है, ब्रह्मा के एक सेकंड में यहाँ आपके 50 बार जन्म होते हैं, अब क्या टाइम पास करना है? टाइम पास जितनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है कि एक सेकंड में आप 50 बार जन्म ले रहे हो, एक सेकंड में आपके 50 बार जन्म और मरण हो रहे हैं। तो यहाँ टाइम पास करने की समस्या नहीं है, टाइम पास हो रहा है ये समस्या कि टाइम पास हो रहा है, कितनी तेजी से टाइम पास हो रहा है। लेकिन अज्ञान मोह है, ये देखो कितना बड़ा मोह है। इसलिए भगवत गीता का रोज श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता का रोज पाठ करना चाहिए। केयम गीता नाम सहस्रम धेयम श्रीपति रूप मजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाये च वित्तम। शंकराचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम, गीता का नाम 1000 बार लेना चाहिए, गीता के नाम को 1000 बार लेना चाहिए, गीता या गेयम माने गान करना चाहिए, गे का मतलब है गे मतलब गाने योग्य है, ये है ना। गेयम भी है, गेयम गे का मतलब होता है ज्ञा, ज्ञा से गे बनता है जानने योग्य, गीता को जानना चाहिए और गीता गे भी है, गे और गे समझ रहे दो शब्द हैं, गे 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 मतलब गाने योग्य है, गीता को गाना चाहिए क्योंकि भगवान के मुख से ये गीत निकला है इसे गाना चाहिए। और दूसरा गीता गे है, गे गे है ज्ञा है ना, जानने योग्य है, गीता को जानना चाहिए समझना चाहिए, ये मोह को दूर करता है, है? और नाम सहस्त्रम, नाम सहस्त्रम विष्णु सहस्त्र नाम, ये विष्णु सहस्त्र नाम भी जो ना गे है, गे मतलब गाने योग्य है विष्णु सहस्त्र नाम। तो एक कैसेट बना है जिसमें हमने विष्णु सहस्त्र नाम गाया है तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, बहुत मधुर वो जो है ना श्लोकों का पाठ हुआ है, वो बहुत सुने बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है। तो भगवान विष्णु के हजार नाम जो है महाभारत में दो चीजें जो है मतलब बहुत दिव्य हैं, एक तो भगवद गीता है दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम। भगवद गीता भीष्म पर्व में है और विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म के द्वारा